जय माँ। तो कुछ प्रश्न आए हैं इधर उधर से, पहले उनको टच कर लेंगे, फिर और अगर प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट, और कोई प्रश्न नहीं होगा तो वील रीड सम पोयम। करीब 1.5 घंटे का समय है। तो पहला एक प्रश्न है, वो वैसे बहुत जल्दबाजी मैंने उसका उत्तर दिया, मोनेस्टिक लाइफ। तो मोनेस्टिक लाइफ के प्रति लोग आकर्षित भी होते हैं, आज का युवा हो रहा है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी बात की। तो मोनेस्टिक लाइफ के पहले तो दो पहलू हैं, दो प्रकार की मोनेस्टिक लाइफ है। मैंने देखे हैं, कई आश्रम भी गया हूँ, देखे हैं, स्वयं श्री अरविंद आश्रम में रह रहा हूँ। तो एक मोनेस्टिक लाइफ है जहाँ जीवन से आपको धीरे धीरे काट दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, भोजन की व्यवस्था होती है, मेडिटेशन की वो होती है, अब कहीं कहीं बेयर मिनिमम जैसे मेडिसिन फैसिलिटी भी ऐड कर दी गई हैं, और बाकी जनमानस की सेवा लेकिन पुराने तरीके से, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए होगी, और ध्यान की सुविधा होगी, इस तरह के कक्ष होंगे, भोजन की सुविधा होगी। उसमें मुख्य चीज़ ये है, एक एक मनस्तिक लाइफ, आप जीवन से थोड़े कट जाते कटने लगते हो, और मानवीय संबंधों का उसमें स्थान नहीं है, बॉयज़ गर्ल्स की मिक्सिंग नहीं है। तो ये मोनेस्टिक लाइफ अदरवर्ल्डली दिशा में जा रही है, कहने का अर्थ ये। दूसरी मोनेस्टिक लाइफ है, कम से कम श्री अरविंद आश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोनेस्टिक लाइफ है, लेकिन वो इस प्रकार से है कि जहाँ पे जैसे एक वैज्ञानिक अपने को शोध के कारण थोड़ा संसार से अलग जाता है, और जब वो शोध करके कुछ प्राप्त करता है तो शेयर करता है संसार के साथ। तो श्री अरविंद आश्रम में सारी एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड है, कला है, विज्ञान भी है, सोलर एनर्जी का पायोनियर रहा है आश्रम, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, अभी भी है चमन लाल जी यूएन वगैरह में जाके, और कला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में श्री अरविंद ने बहुत कुछ इसके बारे में कहा, उनके एक्सपेरिमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में पायनियर रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। वहाँ ये नहीं कि शिक्षा दे दी जाती है गरीब बच्चों को, गरीब अमीर का इशू नहीं है, इशू है नए प्रकार की शिक्षा, कौन क्वालिफाई करेगा नहीं, वो भी एक मॉडल है, और उससे जुड़ी कई चीज़, हेल्थ है तो हेल्थ को भी एक नई दृष्टि से देखने की चेष्टा, केवल ये नहीं कि दवाई दे दो। बहुत दूर हैं हम लोग उस आदर्श से, लेकिन प्रयास ये है कि जीवन की सभी चीज़ें जुड़ी, प्लेग्राउंड है, फिजिकल एजुकेशन पे बहुत जोर है, क्यों, क्योंकि केवल स्वस्थ रहने के लिए नहीं, आपका शरीर उस प्रचंड प्रवाह को, शक्ति प्रवाह को वहन कर सके, ये सारी चीजें वहां पे आश्रम के अंदर। भोजन है, पर वो केवल इसलिए कि नहीं कि आपका बस बॉडी को मेंटेन करना है तो भोजन है, तो उसके पीछे जो पूरा विज्ञान है, क्लिनिनेस हाइजीन के साथ साथ जो माने कहा है सचेतन रूप से किस तरह से, ये सारे थॉट प्रोसेस या एटीट्यूड ऑपरेट करते हैं। और उस आश्रम की मोनेस्टिक लाइफ में गर्ल्स बॉयज को सेग्रीगेट नहीं किया गया है, बहुत आश्चर्य होता है कई लोगों को ये देख के, और पूछते भी हैं लोग, ये प्रश्न करते हैं, तिरुवन्नमलाई में रवन आश्रम में किसी ने एक बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया था, किसी ने पूछा वहाँ के कोई स्वामी जी से कि बाकी सब जगह आप देखिए मोनेस्ट्री में सेग्रीगेट होता है, तो आश्रम में तो ये श्री अरविंद आश्रम में सेग्रीगेटेड नहीं है, ये तो आग और घी को साथ रखने वाले वाली बात है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक उत्तर दिया, उन्होंने कहा वो भगवान है इसलिए वो मैनेज कर सकते हैं, और इसका कई गहरे इसके कारण हैं, क्योंकि अब टिपिकल उसमें क्या होता है कि आप सभी चीज़ों को सुखाते हो, क्यों, आप उसको डिप्राइव कर रहे हो फूड, तो रिलेशनशिप, अब उसमें कई बार आपके अंदर का प्रेम भी सूखने लगता है, संवेदनशीलता, ये कई सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ उनको रूपांतरित करना है, तो जिस ऊर्जा को आप देखोगे ही नहीं, जानते ही नहीं हो, परिचित ही नहीं हो, तो उसको रूपांतरण कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये अलग तरह की मोनेस्टिक लाइफ है, और मेरा मानना है कि पुराने समय के गुरुकुल इस प्रकार के होते थे, और एक बहुत वेदों के प्रकांड पंडित, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कई ट्रांसलेट किए वेदों के, हाँ थैंक यू, दामोदर सातवालीकर, वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने जब प्लेग्राउंड ये सब देखा तो उन्होंने कहा ऐसा मुझे, मैं चाहता था कि कोई रियल वैदिक लाइट में कोई ऐसी जगह हो, तो यहाँ देख के मुझे इसका परिचय प्राप्त हुआ कि हाँ यहां पर ये चीज हो रही है। और ओरिजिनल वैदिक काल में आप देखते हो इस तरह की चीजें जहां सारी एक्टिविटीज रिप्रेजेंट हो रही हैं, स्कूल भी है अटैच, तो सारी चीजें मोनिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई थी। आप देखो लवकुश वाल्मीकि आश्रम को देखो, जो ओरिजिनल माता सीता जाती हैं, अब मतलब आई एम यूजिंग ए लैंग्वेज, प्रेग्नेंट हैं, पति ने छोड़ दिया है और वहाँ मोनिस्ट्री है, आश्रम है, स्वीकार होता है, उनकी डिलीवरी होती है, बच्चे बड़े होते हैं। वहाँ पर प्रसंग भी है कि एक जो फेमस शांडिल्य, उनका विवाह भी होता है, प्रेम विवाह होता है मिथिला की एक लड़की से, वहाँ वो भी विवाहित होकर यहाँ आ जाती हैं। आप लवकुश को सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आप दुष्यंत शकुंतला की, शकुंतला भी आश्रम में है, गंधर्व विवाह भी होता है, संतान भी होती है। ये जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वैदिक काल का, वो जीवन को काट के नहीं था, तो इसलिए वो भी एक मोनेस्टिक लाइफ है। क्यों? क्योंकि आप उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देते हो और जो भी होता है मनुष्य की वृत्तियां वो एक प्रोटेक्टेड फील्ड में हो रही हैं, और यहां तो रूपांतरण है तो वो एक प्रोटेक्टेड ऊर्जा क्षेत्र में ये चीज हो रही है। लेकिन वह मोनेस्टिक लाइफ जिसमें जीवन से हम काट करके चलते हैं, वो एक व्यक्ति का आदर्श हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। कई तरीके हैं भगवान को जाने के, एक एक्सट्रीम संन्यास भी होता है। हालांकि अगर आप मुझसे सच पूछें तो मुझे इसमें एक विरोधाभास लगता है, ये मेरा अपना, कि अगर आप सन्यासी हो और आप जीवन से कट रहे हो तो सन्यासियों का जमघट क्यों? मतलब यू शुड कट ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी, ऑल रिलेशनशिप्स। फिर ये क्या कि पुरुष आपस में, क्योंकि सब कुछ होता है, फिर हंसी ठिठोली एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप फिर अगर रियली मानव संबंध काटना चाहते हो तो पूरी तरह काटो। वो एक मुझे सिंसेरिटी लगती है उसमें, कि अगर मुझे सन्यास लेना हो तो मैं ऐसा, फिर आप चलो, जैसे छोट नारायण जी बताते हैं कि एक बाबा जी घूमते थे, उन सब बोलते थे पगला बाबा, तो इन्होंने उनसे पूछ लिया, आप पागल हो कि बाबा हो? वो कहा मैं बाबा हूँ, पागल नहीं हूँ, लोग समझते हैं। तो इन्होंने उनसे पूछा भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा और किसको देखने की चीज़ है? तो इन्होंने पूछा मुझे दिखा सकते हो? बोले नहीं, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम्हारे गुरु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ही न्यू ऑल दिस। अब वो जो सन्यास है उसमें सिंसेरिटी है। अगर आप सन्यासी हो और संसार को अल्टीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीच में, स्वामी विवेकानंद एक अनूठे व्यक्तित्व हैं तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर अंततः अगर सन्यास माया है तो आप किसको जाके बता रहे हो कि सन्यास माया है? देश विदेश में क्या लेक्चर दे? अगर अद्वैत की ये पैराडॉक्स है कि देयर इज नो इंडिविजुअल सोल बट ओनली ईगो जो रिसाइकिल हो रही है, तो ईगो का तो अपने आप में कोई परमानेंट अस्तित्व तो नहीं है, आप किसको जगा रहे हो? उसमें कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो उसमें नहीं जा रहा हूं, मेटाफिजिकल डायलेक्टिक्स में मैं केवल सिंसेरिटी की बात कर रहा हूं, कि वो एक विरोधाभास है, कि अगर आप सिंसियर हो तो फिर एक स्वामी नहीं जाएगा। स्वामी विवेकानंद इज ए मैन विद ए मिशन, ही इज एन एक्सेप्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जो जिन्होंने ऑरेंज रोब को जस्टिफाई किया, बट देर आर मैनी हु डू नॉट जस्टिफाई इट। एक तो ये बात है, दूसरा है कि एक इंडिविजुअल का हो सकता है ये तरीका, एंड नथिंग रॉन्ग विद इट, वो जा भी सकता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको नेशनल आइडियल बनाना ये बड़ी घातक चीज हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण इसकी बात नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की एक जो अद्भुत बात यही है कि जब सन्यास की बात कर रहे हैं तो अब श्री अरविंद आश्रम श्री कृष्ण के ओरिजिनल वैदिक लाइन्स पर है, जैसे श्री कृष्ण भी संदीपन स्कूल गए थे, वो भी आश्रम है, वहां उन्होंने सारी विद्याएं सिखाई जाती थी, तो वो एक ओरिजिनल सेंस में आश्रम था। लेकिन अब जो मोनेस्टिक ऑर्डर है वो अलग है, सन्यासी, तो अब श्री कृष्ण से यही तो अर्जुन पूछते हैं, तो वो त्याग की बात करते हैं, सन्यास की नहीं। और मुझे लगता है कि ये आइडियल प्रस्तुत होना चाहिए, अर्जुन ना केवल, अर्जुन को योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने यंत्र के रूप में चुना है। देखिए पैराडॉक्स है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें भी दो राय नहीं कि योग योगेश्वर हम मानते हैं, गीता के हर उसमें है, हर कोई कहता है कि अल्टीमेटली श्री कृष्ण। अर्जुन का जीवन चरित्र देखिए, ही इज मैरिड नॉट ओनली टू द्रौपदी, सुभद्रा अपहरण होता है उनका, अपहरण इज ए ह्यूमन वे ऑफ सेइंग, दोनों प्रेम करते हैं, उनका प्रेम विवाह उलूपी के साथ भी होता है, चित्रांगदा के साथ भी होता है, उनकी संतान भी होती है, पर अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे परम सखा हो। और इसका सीक्रेट मिलता है जहां श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, दे आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज सर्वेंट, those who sweep his temple floors in silent adoration, and those who fight the great battle of the world for his divine consummation in humanity. Sri Aurobindo ने आश्रम में साधकों को एक समय था जब वर्ल्ड वार में ज्वाइन करने के लिए भेजा था, दिस ए वार ऑफ द फॉर द डिवाइन. तो उस तरह की मानसिकता कम से कम नेशनल लेवल पे और ह्यूमैनिटी के लेवल पर मनुष्य को विकास की ओर ले जाएगी. मॉनेस्ट्रीज, इसको अगर हम नेशनल आइडियल बना देंगे या ह्यूमन आइडियल, तो वो सदैव विरोधाभास में रहेगा मनुष्य. और ये प्रश्न मैंने कईयों से पूछा है. एक समय था जब मैं प्रश्न करता था आश्रम में जाके कि भाई आप अल्टीमेट कहते हो कि ये संसार माया है, तो किसको ये ज्ञान बताया जा रहा है? और ये बहुत अटपटा सवाल है और बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में लोग आए हैं, इससे गुस्सा भी हुए हैं. छोटा बच्चा ही इतने सवाल करता है, 10 साल का था मैं. मैंने कहा नहीं, ये मेरा जेन्युइन सवाल है. ये अगर माया है, वहां पे मनी भी आता है, सब आता है, एवरीथिंग कम. सो आई फील कि कम से कम नेशनली हमको ये आइडियल हटा देना चाहिए. और ये कैसे हटेगा? किसी को कोई रेगुलेशन नहीं करना है. ये जो हमारे बड़े बड़े जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के बहुत लोग हैं जो ध्वजवाहक हैं, वो अंत में वहीं जाते हैं. तो फिर आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू टीचिंग? बाय योर ओन एग्जांपल यू आर टीचिंग द ऑपोजिट. आप फिर भारत को उसी विपन्नता की ओर ले जा रहे हो. शंकरा श्री अरविंद से किसी ने पूछा था भारत क्यों गिरा, इतना ऊर्जावान था, इतना शक्तिशाली. और आप ट्रेस करिए हिस्टोरिकली, पोस्ट बुद्धिस्ट गोल्डन पीरियड हम किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना? कहीं भी हिस्ट्री बुक में पढ़ लो. चंद्रगुप्त मौर्य ने जाते जाते जैन, मेरे दृष्टि में था बुद्धिज्म, बट सम पीपल से जैनिज्म, डजंट मैटर, अल्टीमेटली आप संसार से कट रहे हो. जिसके चलते चाणक्य उसमें बहुत नाराज हुए थे. आप देखिए उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, बुद्धिस्ट और शंकराचार्य का जो इन्फ्लुएंस हुआ. तो श्री अरविंद कहते हैं बिकॉज इंडिया रिजेक्टेड शक्ति, शक्ति रिजेक्टेड अस. शक्ति के उपासक, ये भी आवश्यक है. और शक्ति तो फिर आप एक एरिया में नहीं ऑपरेट करती है, शक्ति तो सर्वत्र है, कहां नहीं है. और उस शक्ति के कारण उन्होंने ये सारी चीजें, विधाएं जिसकी हम बात करते हैं, प्रकट की थी. तो अगेन एंड अगेन आई फील, और ये पॉइंट को कभी भी हम ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते, कि मॉडर्न इंडिया में ये बहुत आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअलिटी को संन्यास इक्वल टू संन्यास, स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू मोक्ष, मोक्ष इन द सेंस इट इज यूज्ड, कि आवागमन के फेरे से छुटकारा. मोक्ष का सत्य है, यथार्थ है कि हम अंदर में अज्ञान से मुक्ति हो, जो ओरिजिनल सेंस है उसका, कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं. केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, बाय एक्सपीरियंस वी नो क्या एक्सपीरियंस है. और अगेन पैराडॉक्स देखिए, इफ आई नो रियली दैट अहम ब्रह्मास्मि, फिर किसका भय होगा मुझे, किस संसार का? आई विल बी फियरलेस. ये कहा भी गया है कि ब्रह्म ज्ञानी की एक पहचान होती है, निर्भय होता है. दूसरी पहचान होती है, ईश उपनिषद कहती है, ततो ना विजुगुप्सते, किसी चीज से वो श्रिंक नहीं करता है. क्यों? ऋषि अगस्त को देखिए, युद्ध के अस्त्र है उनके पास, मीट खा लेते हैं उसके घर में, वो वातापी की जो पूरी स्टोरी है, और पचा लेते हैं, बड़ी मजेदार स्टोरी है. समुद्र को पी जाते हैं. ये है हमारे ऋषि. ये नहीं जो गिरवा पहन के हम चले गए, हम नहीं देखो बेटा बच्चे ये मोह माया है, अपनी माया भी मुझे दे दो, मोह में जिससे आपकी पॉकेट हल्की हो जाए, आप माया में नहीं फंसे. मुझे अधिकार है मोह का, क्योंकि आपका जो विष है मोह रूपी, वो मैंने अपने अंदर ले लिया है. चेंज मोह इनटू लव. श्री अरविंद क्या कहते हैं? अटैचमेंट इज इगोइज्म इन लव. श्री अरविंद का महावाक्य है, अटैचमेंट इज इगोइज्म इन लव. और आगे वो कहते हैं इसके बारे में कि जो ये जो वृत्ति हुई इसको छोड़ देने की बाहर से, इससे कोई चीज बदलती नहीं है. आप देखिए किसी सन्यासी को, जैसे ही वो वर्ल्ड में आता है, ही बिकम्स वर्स. तो रूपांतरण की जो बात, अगर रूपांतरण नहीं भी करे तो कम से कम जीवन मुक्ति हमारा आइडियल होना चाहिए. रूपांतरण आई एग्री स्पेशलाइज प्रोसेस है, कॉलिंग नहीं है तो आप नहीं प्रवेश कर सकते. इसकी एंट्री वही काफी हाई है, पर जीवन मुक्त का तो आइडियल रख सकते हैं. अब मैं दुविधा में फंस गया, क्योंकि जीवन मुक्त पोयम याद आ रही है और शिक्षा तो, रुक जाए जरा, पढ़ लेंगे पोयम को. हाँ, अब आ गया ना वो जीवन मुक्त, ये हमारा आइडियल होना चाहिए, ना कि ये दोनों हम आइडियल्स थोड़े पढ़ लेते हैं। चलो अब आ गए तो आ गए इस पर। ओके हे प्रभु। अब यही समस्या होती है, बहुत सारी पोयम आने लगती है, कौन सा पढ़ा जाए। ओके जीवन मुक्त तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और इसके साथ में ओके 163-164 एंड जीवन मुक्त विल कम लेटर ऑन पोयम्स एंड न्यू मीटर्स। नहीं वो काम नहीं करेगा, मुझे निकाल के दे दो, वो इजी रहेगा फोन के ऊपर। हाँ निकल वो अभिलाष निकाल देता है, आप रखिए क्योंकि ओके सो निकल जाइए, मुझे भी अभी बस आई विल जस्ट गेट इट इन वन मोमेंट, पर निकल जाए तो ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये दो आइडियल्स की बात करी तो हाँ रूपांतरण की जो बात है वो अलग है, ये एटलीस्ट स्पिरिचुअली भी भारतवर्ष में ये दो आइडियल्स रहे। श्री कृष्ण ने जीवन मुक्त का आइडियल रखा है तो, लेकिन पहले और ये सारे अनुभव श्री अरविंद को हुए थे। अगर आप अद्वैत पढ़ेंगे और उनकी दूसरी पोयम पढ़ेंगे द हिल टॉप टेम्पल, तो उसमें यू सी ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जो शंकराचार्य और सन्यासी वगैरह को हुए थे, ये सब अनुभव उन्होंने बटोरे थे। और वो इसीलिए कहते हैं मेरी समस्या ये कि मुझे उसके आगे का अनुभव हो गया तो अब मैं कैसे इसको फाइनल कह दूँ, मुझे ये अनुभव हुआ है, और वो पूरा विस्तार से बताते हैं कि वो एक्सपीरियंस क्या है। उनके लिए ये थ्योरी नहीं थी। माँ श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि जब तक मैं उस चीज को मेटीरियली एक्सपीरियंस नहीं करती थी मैं इसको सत्य नहीं मानती थी। तो ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद वो आगे जाते हैं। तो अब जो जीवन मुक्त का आइडियल है, जीवन मुक्त देयर इज ए साइलेंस ग्रेटर देन एनी नोन टू अर्थ डम्ब स्पिरिट मोशनलेस इन द सोल That has become eternity's foothold, touched by the infinitudes forever. जो साइलेंस है, अब यहां देखिए भगवद गीता का एक अलग प्रकार का सार आ रहा है, साइलेंस अक्षर ब्रह्म परमम। लेकिन भगवद गीता क्या कहती है, इसके परे पुरुषोत्तम है, ये फुटहोल्ड है एक्शन के लिए। दैट इज द डिफरेंस। गीता में जो तीन पुरुषों की बात हुई है दैट इज वॉट मेक्स इट यूनिक। लोग कहते रहते हैं कि ये उपनिषदों का सार है, उपनिषदों का सार है। उपनिषद में दो पुरुषों की बात हुई है। अगर गीता की लैंग्वेज में देखें तो शरभाव और अक्षर। पुरुषोत्तम की बात श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, द थ्री पुरुषास। अब उनको भी हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया कि वही जो उपनिषदों में है वो क्या गाव दोगता श्री कृष्ण। ए स्प्लेंडर इज हियर रिफ्यूज टू द अर्थवर्ड साइट। इसके लिए आपको उस मुक्ति की अवस्था में प्रवेश करना होता है, नहीं तो आप इसमें फंसे रहते हो, उलझे रहते हो। दैट फ्लड सम डीप फ्लेम कवर्ड ऑल सीइंग आई रिवील्ड इट वेकेंस व्हेन गॉड्स स्टिलनेस हेवेंस द ओशन ऑफ मूवलेस नेचर ए पार डिसेंड्स नो फेट कैन परटर्ब और वैंक्विश। ये थे हमारे ओरिजिनल ऋषि। पार डिसेंड्स ऐसी शक्ति थी कि वो अपने तपोबल से तेज से, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, दे कुड फिक्स दैट प्रॉब्लम। माता जी चाइना वार के समय जैसे इंटरवीन करती हैं, और बांग्लादेश वार में भी उन्होंने इंटरवीन किया था, एंड आई एम श्योर शी इज डूइंग व्हाट शी हैज टू डू इवन नाउ. वो ये नहीं कि हम जाके या तो वो सेना इंस्ट्रूमेंट बनेगी या जो भी होगा बाहरी इंस्ट्रूमेंट बनेगा. दे हैड दिस कैपेसिटी. दधीची अपनी बोन्स देकर के वृत्रासुर का वध का वो करते हैं. एक शक्ति है उसको अपने अंदर अर्जित करना, उसकी अर्चना करना, उसको प्रकट करना. कामर देन माउंटेन्स, ये कौन सी शक्ति है जो डिस्टर्ब नहीं होती है. शेरविंद का माता जी बताती ना, जब वो जाती हैं रूम में, साइक्लोन आया हुआ है देखने को, कि भाई खिड़कियां बंद कर दूं मैं. देखती हैं शेरविंद अपने डेस्क पे लिखते जा रहे हैं, खिड़कियां खुली हैं, ना हवा का वेग, ना एक बूंद पानी अंदर आ रहा है. परफेक्ट साइलेंस इज परवेडिंग. मास्टरी ओवर द एलिमेंट्स. शक्ति होनी चाहिए ये. और ये मटेरियल पावर तो इसका एक छटाक है. तो दैट शुड बी. मायावाद ने शक्ति को रिजेक्ट किया है. ए सिंगल माइट ऑफ ल्यूमिनस क्वाइट टायरलेसली बेरिंग द वर्ल्ड्स एंड एजेस. फिर आनंद को भी हमने रिजेक्ट किया. शांति 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 होता है ना अंत में, ओम शांति शांति शांति. श्रीविंद कहते हैं हम कौन है, आनंदस्य पुत्रस्य. अब जब श्री कृष्ण कहते हैं मवे वंश, तो यही बात कह रहे हो. ए ब्लिस सराउंड्स विद एक्सटेसी एवर लास्टिंग एन एब्सोल्यूट हाई सीटेड इमॉर्टल रैप्चर. इसी को तंत्रों ने प्रयास किया उस शक्ति के नर्तन को पकड़ने का. लेकिन अंत में उन्होंने उस शक्ति को भी एक डोर बनाया टू एंटर इनटू पुरुष. बट नेचर की कितनी कितना कुछ बढ़ सकता है. एन एब्सोल्यूट हाई सीटेड इमॉर्टल रैप्चर पजेसेस सीलिंग लव टू वननेस. रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है लव को, वननेस में चेंज किया जा रहा है. सावित्री में अंत में क्या है कि तुम्हारा ये जो मैजिक है सावित्री, तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है, कौन सा रहस्य है जो तुमने छिपाया हुआ है. सावित्री क्या कहती है, अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. यहां तो उल्टा है सब. त्यागना क्या है, वृत्तियों उनकी जो लव को नहीं त्यागना है, लस्ट को त्यागना है. बेबी विद द बाथ वाटर नहीं त्यागना है, जीवन को नहीं त्यागना है. जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं कामनाओं के साथ, ईगो के साथ, उसको त्यागना है और फिर जीवन से जुड़ना है जैसे भगवान जुड़े हैं जीवन से. इन द ग्रास्प ऑफ द ऑल ब्यूटिफुल ऑल बिलवेड. अब जीवन मुक्त कैसा होता है, क्या करता है वो किस मोनेस्ट्री में मिलता है, क्या वो भी संसार से भयभीत होकर जाता है. अब देखिए आ रहा है, ही हु फ्रॉम टाइम्स डल मोशन एस्केप्स एंड थ्रिल्स रैप्ड थॉटलेस वर्डलेस इनटू द इटर्नल्स ब्रेस्ट अनरोल्स द फॉर्म एंड साइन ऑफ बीइंग सीटेड अबव इन द ओमनिसिएंट साइलेंस. उसने ओमनिसिएंस को, उस साइलेंस को जान गया है, तादात में है उसके साथ. फिर वो जीवन में उतरेगा कि नहीं, ऑल दो कंसेंटिंग हियर टू ए मॉर्टल बॉडी ही इज द अनडाइंग लिमिट एंड बॉन्ड ही नोज नॉट. आप उसको बोल सकते हो नाम से, पर उसने स्वयं को अपने नाम और रूप से सीमित नहीं किया है. ही इज द अनडाइंग. फॉर हिम द एओन्स आर ए प्ले ग्राउंड. उसे पूछेंगे यहां क्या कर रहे हो, खेल रहा हूं मैं किसके साथ, काल के साथ खेल रहा हूं, काल की गति के साथ. कोई बोना चाहिए ना टक्कर का, जो कालातीत अवस्था में किसके साथ खेलेगा, काल की गति के साथ खेल रहा हूं. उसको मैं नया नृत्य सिखा रहा हूं. अब देखिए, फॉर हिम द प्ले एओन सारे प्ले ग्राउंड लाइफ एंड इट्स डीड्स आर ही स्प्लेंडिड शैडो. फिर वो क्यों कार्य करता है, अब देखिए श्री कृष्ण ने इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, जिसको हम भूल गए, लोक संग्रहार्थ. जब उसका अपना इगोइज्म नहीं है तो किस लिए कार्य करेगा? फॉर द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन फॉरवर्ड इवोल्यूशन, ओनली टू ब्रिंग गॉड्स फोर्सेस टू वेटिंग नेचर, स्वयं में भी और सृष्टि में भी, टू हेल्प विद वाइड विंग पीस हर टॉर्मेंटेड लेबर एंड हील विद जॉय हर एंशिएंट सॉरो, कास्टिंग डाउन लाइट ऑन द इनकॉन्शियंट डार्कनेस. एक बड़ा पावरफुल पैसेज शेरविंद का. यदि यह संसार अंधकार में है तो ऑल द मोर रीजन कि प्रकाश के दूत यहां पर आए. यदि यह मर्त्य अवस्था में है तो ऑल द मोर रीजन दैट द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी शुड इन्वेड इट. कहते ना, ये छलना है. यदि यह छलना है तो और भी आवश्यकता है कि सत्य यहां पर आप स्वयं को प्रकट करें. छलना एक ओरिजिनल सेंस में नहीं है, वो तो आवरण है. तो सत्य क्या है वो प्रकट करे. ओनली टू ब्रिंग गॉड्स फोर्सेस टू वेटिंग नेचर, टू हेल्प विद वाइड विंग पीस हर टॉर्मेंटेड लेबर एंड हील विद जॉय हर एंशिएंट सॉरो, कास्टिंग डाउन लाइट ऑन द इनकॉन्शियंट डार्कनेस, ही एक्ट्स एंड लिव्स. के जीवन का प्रयोजन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है. संसार से क्यों भागेगा? ट्रेडिशनल मोक्षवादी धारा में कर्म है, पर कर्म इज ए प्रिपरेशन टू मोक्ष. उसके बाद कर्म का औचित्य समाप्त हो जाता है. मुक्ति के बाद कर्म का कोई औचित्य नहीं है. यहां पर वो कह रहे हैं कर्म का औचित्य है. क्यों कर्म करेगा जो मुक्त है? इसलिए सृष्टि के अंदर प्रकाश और आनंद और उसको लाने के लिए. वेन थिंग्स आर माइंड स्मॉलर मोटिव्स. इसलिए नहीं कि मेरा नाम नेम फेम मनी इसके लिए नहीं काम करेगा. परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसके लिए नहीं काम करेगा. तभी तो श्री कृष्ण से ये तभी तो आता है योगक्षेम वहां में हम की लॉजिक. ऐसे नहीं है कि मैं श्री कृष्ण पर आश्रित हो गया. वो नेचुरल प्रश्न है कि जो जीवन मुक्त है वो संसार में केवल भगवान के लिए जी रहा है तो उसके परिवार का क्या होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहां में हम. तुम योगनिष्ठ हो तो आई विल टेक केयर, I'll take care and I have means, million hands. To one whose soul enjoys for its high position infinity and the sempiternal, all is his guide and beloved and refuge. कहाँ वो बोलेगा कि वे तो भगवान दिव्य नहीं है, भगवान नहीं है. All is his guide. पत्थर से उसको भगवान बोल रहे हैं. All is his guide and beloved and refuge. तो ये जो आइडियल है ये हमारा होना चाहिए और ये होगा, क्योंकि लंबे समय तक मनुष्य इस दूसरी धारा को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि उसमें विरोधाभास है. यदि हम सुन के आते हैं कि मोक्ष ही और ये संसार एक माया है तो अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. इसलिए कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ फिर मटेरियल लाइफ. मैंने कहा इन दोनों में आप दो फांक क्यों कर रहे हो? स्पिरिट हैज बिकम मैटर, तो मटेरियल लाइफ को स्पिरिचुअल ट्रूथ से इंप्रेग्नेट करो. तो ये जो डायनामिक एस्पेक्ट है ना भगवान का, शक्ति का, उसको हम भूल गए मोक्षवादी धारा में. सो दिस द आइडिया, नया आइडियल है जो शेरविंद ने धरती के सामने रखा है. स्वाभाविक है बहुत कम लोग हैं अभी, क्योंकि वो छाप बहुत. हम लोग जैसे ही आश्रम में आके लोग पूछते हैं कई बार, मेडिटेशन हॉल कहाँ है? कहना पड़ता है कि भैया सारे डिपार्टमेंट, प्लेग्राउंड, आश्रम, कहीं चले जाओ सब मेडिटेशन हॉल है. नहीं नहीं, वो अलग से बैठने वाला मेडिटेशन, ऐसा नहीं है. श्री अरविंद के योग में ऑल लाइफ इज योगा. आप करें अलग से बैठ के, ये नहीं कोई इस योग में भी है, पर वो जो एक टेंडेंसी. फिर कहते हैं प्रवचन कहाँ होते हैं? ये ओरिजिनल आंसर है. पर ये जो एक टिपिकल वो होती है ना, गरीब लोगों को खाना कहाँ खिलाया जाता है? भोजन भंडार. भैया गरीब तो हम हैं, हमको असली भोजन क्या है मालूम ही नहीं. उसके लिए हम लोग सब लाइन में खड़े होते हैं, गरीब को भोजन खिला दो, ये जो नर की सेवा ही नारायण की सेवा, ये सारे आइडियल, क्योंकि ये विरोधाभास है। ये क्यों आया? इसीलिए आया कि आप अंदर में, लेकिन आपके अंदर कोई चीज है जो संसार से जुड़ी है, आप कुछ करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? नर की सेवा, चलो हम एक फिलान्थ्रोपी करें, बड़ा संतुष्टि मिलती है, लेकिन दैट इज नॉट स्पिरिचुअल लिविंग। तो ये डिफरेंस कई हैं आश्रम जो आजकल ये करने लगे हैं, श्री रामकृष्ण आश्रम में करते हैं फ्री मेडिसिन और वो सब करते हैं, बट दैट्स नॉट स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल इन एक्शन। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट था, इसको अभिलाष अलग से इसको नोट कर लेना है, एंड देन वी कैन टेक अप। कुछ शिक्षकों का प्रश्न है, उसको टच कर लें थोड़ा, 10 मिनट। तो प्रश्न किए था सब, हम सब शिक्षक हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, पहली चीज ये जान लीजिए, पहला सूत्र मैं दे रहा हूं, ये जो समझता है मैं शिक्षक हूं और इसको पढ़ाऊंगा, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो यूनिवर्सल टीचर है ना, वो सबको पढ़ा रहा है अपने ढंग से, और ना शिक्षा केवल विषय वस्तु से नहीं जुड़ी है, परम विषय कौन है, वह जो सीख रहा है वह कौन है, तो ये अनलेस वी नो आर सेल्स, और ये हर चीज में इनबिल्ट है, हर चीज शिक्षा का माध्यम है, इसको जो आजकल वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन, कैसे उसको करेंगे? हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करे, ये सबसे लास्ट तरीका गवर्नमेंट एक्ट पास, गवर्नमेंट सिलेबस, ये मोस्ट लेजी टेंडेंसी है। अरे गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, आप कर सकते हैं बहुत कुछ इम्प्लीमेंट। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता था, जब साइकेट्री भी पढ़ाता था, तो लोग पूछते थे कि आप कैसे श्री अरविंद माता जी स्पिरिचुअल ये सब कैसे पढ़ाते हैं? कहा ये मेरी मर्जी है, सिलेबस में मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता हूँ, सिलेबस में नहीं है उसमें फ्रॉयड है, मैं क्या करूँ, वो लिमिटेड है, फ्रॉयड भी पढ़ाता हूँ और फिर बताता हूँ कि देखो बड़ी लिमिटेड चीज है, उसकी सीमाएं बताता हूँ, उसके आगे की चीज बताता हूँ, वाई नॉट, हु कैन स्टॉप यू, कोई मना करेगा कि इसके आप सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, आप सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, कर दिया। तो एक तो ये है, दूसरा अब हर समय तो कोई टीचर नहीं होगा बताने के लिए, उनकी जिज्ञासा को जगाइए, और ये कल भी मैं बोल रहा था, जहां उत्तर समाप्त होते हैं वहां ज्ञान प्रारंभ होता है, पुस्तकों के उत्तर, पुस्तकों के प्रश्न उत्तर की सीमा होती है, उसके आगे जब आप प्रश्न करते हैं व्हाट मोर, व्हाट इज बियॉन्ड, यही तो क्वेस्ट है, मोक्ष के परे क्या है, आप अल्टीमेट कर ले कुछ है, तो ये प्रश्न बच्चों के अंदर आजकल हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान के आगे क्या है, करते हैं, उनको अधिकार है, भगवान कहां से आया, ये प्रश्न उनके सब वैलिड है, कोई इनवैलिड कोई क्वेश्चन नहीं है, आंसर्स हमारे वैलिड इनवैलिड होते हैं, क्वेश्चन सारे इनवैलिड है, तो उनको प्रश्न जिज्ञासा सिखाइए, और वो तब तक हम नहीं सिखा सकते जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा ना हो। हमारे यहां इतने उत्तर हैं कि हम लोग प्रश्न करना भूल गए हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए एक उत्तर है, पीड़ा कष्ट क्यों, अरे तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं करता भैया कौन से जन्म में कौन से कर्म थे, किसकी पीड़ा हम भुगत रहे हैं, नहीं बुरे कर्म किए होंगे कोई, अच्छा बुरा कर्म क्या होता है डिफाइन तो कर दो, तो बुरा कर्म यह होता है कि तुम बुरे ढंग से पैसा कमाते हो, तो वो सामने जो तीन कोड़ी सील है वो तो हम जानते हैं कि वो आटे के अंदर क्या क्या मिलाता है, वो असली मिठाई नहीं मिलाता बनाता, वो तो सारा ये मिक्सचर कर रहा है, तीन मंजिला मकान बना लिया है, कोरोना के नाम पे लोगों ने घर बना लिए, इसको तो कुछ नहीं हुआ, कोरोना भी नहीं हुआ, और हमारे दादाजी तो बहुत अच्छे थे, इनकम टैक्स भी भरते थे, अब पूछेंगे हम, ये नहीं नहीं वो तुम समझे नहीं, वो पुराने जन्म का कोई हिसाब, ये जो कर रहा है इसका अगले जन्म में मिलेगा कौन से जन्म में, हो सकता है 5 जन्म बाद 10 जन्म बाद, लगता नहीं कभी अटपटा, पर कभी प्रश्न नहीं किया, क्यों नहीं किया, पूछिए, सीक्रेट है ये। अब मैं तो करता था ये सब, लोग बड़े परेशान हो जाते थे, जितने बाबा आते थे ये सारी चीजें यही कहते थे, ये बहुत आपका मम्मी जाती थी, ये जो बच्चा है ना आपका, ये बहुत तर्क करता है, जनेऊ पहनाया जब उपनयन हुआ, पहले मैंने कहा कि मैं तो नहीं पहनूंगा, बोले क्यों, मैंने कहा समस्या ये कि आप मुझसे एक वचन मांगने वाले हो जो मुझे पता है जो मैं नहीं कर सकता, तो क्या वचन मांगते थे कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, मैंने कहा आई कांट प्रॉमिस यू दिस। अब देखा जाए तो कोई समझदार होता तो वो समझता कि मैं ये एक सत्य ही बोल रहा हूं कि आई कांट प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर दूं और नहीं करूं वो तो बहुत गलत बात है, प्रॉमिस ही नहीं करूंगा, आप प्रॉमिस मुझसे क्यों ले रहे हो ऐसी जो मैं नहीं कर पाऊंगा, लॉजिक वॉजिक छोड़ो, मैं चलो मान लिया आपने पहन लिया, आई कांट फुलफिल दिस प्रॉमिस। फिर मम्मी पापा वही होता है ना कि बेटा दीदी की शादी हो रही है साथ में हो जाएगा निबट जाएगा, ऐसे वैसे तू क्यों, बाद में तुझे जो करना है करियो, तो जैसे कहा जो करना है करियो, उन्होंने कहा चलो ठीक है 2 दिन बाद में उतारने। तो जब इस हद तक गया कि जब उन्होंने कहा मुझसे ना कि प्रॉमिस तुम बोलो, मैंने नहीं बोला, और वो गुस्सा हो रहे थे कि तुमको मुंह से बोलना है, मैंने कहा नहीं बोलूंगा, तो अंत में ही गेव अप, ही से ठीक है उनको भी अब अपनी सामग्री इकट्ठी करनी है मैं नहीं बोलूंगा, आप करा दीजिए, हो गया आपका काम खत्म हो गया, बट आई विल नॉट से बिकॉज आई कैनॉट प्रॉमिस दिस कि आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई नो स्पीकिंग ट्रूथ इज गुड, आई डोंट नीड अ जनेऊ टू बिलीव इन दिस, आई बिलीव कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन नहीं होता कई बार, तो आई मस्ट नो दिस, प्रैक्टिस पूरी करता था अंदर अंदर कि मैं सत्य ही बोलूं, पर आई कांट से कि भविष्य में क्या होगा कैसे होगा। हालांकि उससे मेरे मन में दूसरा उदाहरण था जो मैं देता था कि कोई अगर घर में आपके कोई छिप गया टेररिस्ट ढूंढने आ रहा है, मेरे मन में ये उदाहरण आता था कि क्या मैं डिस्क्लोज करूंगा, उस समय नहीं पता था कि और संसार में बहुत कुछ होता है, हर चीज आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज थी, वो असत्य नहीं है, वो साइलेंस है, परंतु ये सब कौन सुनेगा कौन समझाएगा। तो ये बच्चे जो हैं ये इनको जिज्ञासा जगाई है, इनको फिक्स्ड फॉर्मेट में मत डालिए, उनको प्रश्न करने दीजिए, एक सेशन होना चाहिए ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन, और जिसमें उनको किसी प्रकार का प्रश्न, आप देखिए अचंभित होंगे, फ्री फ्लोइंग क्वेश्चन, हफ्ते में एक दिन एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां कहानियां जो आपको इंस्पायर करती हैं, जिसमें वैल्यूज इनबिल्ट हैं, ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, उसमें वो कहानी में ही है, और कितनी कहानियां हैं जो आई हैव बीन इंस्पायर्ड, बहुत कहानियां पढ़ता था, मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ के, तो उसमें अब जैसे लव को देख लीजिए कितने उसका आयाम है, तो हम पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ते हैं तो आनंद आता है, आह क्या प्रेम है उसके लिए, क्या नहीं उन्होंने अंत में, तो किस तरह का वो व्यक्तित्व रहा होगा, वो मूवी वाला व्यक्तित्व तो नहीं, रियल लाइफ में कैसा रहा होगा वो व्यक्ति। तो ये सारे कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें हम इसके अलग अलग डायमेंशन देखते हैं, तो उनको प्रश्न करना सिखाइए, खुद प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, क्या मैं केवल एक शिक्षिका हूँ, मिसेस सो एंड सो हूँ, मिस सो एंड सो हूँ, डॉटर ऑफ समबडी, वाइफ ऑफ समबडी, है मेरा अपनी भी कोई पहचान है, मेरा अपना कोई लक्ष्य है, जितना हम प्रगति करेंगे उतना ही हम दूसरे को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, उसके आगे नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि हम लोग इंस्पायर होते हैं ऐसे कोई सत्संग होते हैं, इसके बाद फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट में रहिए, इग्नाइटिंग स्पार्क है, लेकिन उस अग्नि को जलाने के लिए समिधा चाहिए। समिधा क्या है, सिंपल, रीड मदर एंड शोरबिंदोज बुक्स, और हर एक स्कूल में एक वीक में एक दिन होना चाहिए, एक पीरियड जिसमें हम श्रीमा ने जो एजुकेशन के ऊपर, और मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि अच्छा आ गए अटेंडेंस लग गई, एक इशू ले लीजिए उस पर, लेट द टीचर्स थिंक, कम अप विद देयर आंसर्स एंड देन कम विद व्हाट मदर हैज स्पोकन अबाउट इट। तो एक पार्टिसिपेशन होगा ना, कि भाई डिसिप्लिन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बड़े रेस्टलेस हैं, किसी ने कहा था ना। तो मैं तो ये पूछूंगा कि आप बताइए उसका कारण और उत्तर क्या है पहले, बिफोर आई गिव माय, क्योंकि नहीं तो पैसिव लर्निंग होती है कि हमने बता दिया वो माँ की लाइट, मदर हैज सेड दिस, दैट इट डजंट वर्क। इस प्रश्न को ले लेते हैं, क्या लगता है आज के बच्चे इतने रेस्टलेस क्यों हैं? एनी आंसर? यह ऑब्जर्वेशन है, सही है साइकोलॉजिस्ट? हाँ वो तो एक पार्ट है, एग्रीड, इंक्विजिटिव है, लेकिन रेस्टलेस क्यों है? रेस्टलेस हम कब होते हैं? अब देखिए इसको अगर प्रोब करेंगे, सारी किताब हमारे अंदर है, हम रेस्टलेस कब होते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी, हाँ कुछ करना चाहती है ना, एनर्जी है ज्यादा तो कुछ करना चाहती है। नॉर्मली हम किस प्रयोजन से कोई चीज करते हैं, कौन सी चीज हमको प्रेरित करती है, मूव करती है कुछ करने के लिए? डिजायर है ना। अब देखिए अभी कोई आए, दोस्त आ रहा है, देखिए कैसे हो जाते हैं लोगों के, नहीं तो फुस बैठे थे। अच्छा अरे मेरा दोस्त आ रहा है, उठ के खाना भी बन रहा है, ये बन रहा है, सब बन रहा है, हो गया ना, वो डिजायर प्रेरित करता है। ये ऑर्डनर वो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन डिजायर की समस्याएं होती है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसको क्या रिफाइन कर सकते हैं? अब शुरू हो गया, इसमें कुछ योग स्पिरिचुअलिटी करने की जरूरत नहीं है। कैसे आप रिफाइन कर सकते हैं? ये घरों में कैसे सिखा देते हैं? मिठाई बनी है, बहुत अच्छी बनी है, वेरी गुड, स्टार्ट विद भगवान को भोग, आप बैठ गए ना, उसके बाद पहले कौन खाएगा? ये सारी जो प्रोसेस थी, बड़ों में पहले कौन खाएगा? अब पहले हम लोग कहते थे कि लेडीज, वो घर की जो लेडी होती लास्ट में खाती थी, वो पेशेंस ये सब डेवलप होता था, उसका कारण था कि वो भाई खाना कम ना पड़ जाए, ये भाव बहुत सुंदर था। पर ये नहीं कि सारी औरतें बाद में खाएंगी, दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो अब इसमें आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप क्या ट्रेन कर रहे हो? अब इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएंगी, इमोशनल एजुकेशन, उसका क्या सार तत्व है? डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। तो आप क्या कह रहे हो? आप डिजायर भी जब आपको मूव कर रहा है तो आप ऐसे नहीं, हाँ मैं इसको इमीडिएटली ले लूं। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, एक चीज डेवलप होती है। देखिए कितना अंतर होता है, एक विवाह में आप क्या करते हो? डिले करते हो ग्रेटिफिकेशन को, और एक है कि इमीडिएटली। अब उसमें क्या होता है कि चीजें टूट जाती हैं। क्यों टूटती हैं? आप ग्रेटिफाइड हो गए, खत्म हो गई बात, आपने एक दूसरे के बीच में परस्परता को जोड़ा नहीं, समझा नहीं। इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, बट यू मस्ट लर्न टू, इसके कई हमारे उसमें थे सिस्टम में, गौना होता था फिर विदाई होती थी, ये दो अलग चीजें थी, है ना। बीच बीच में आप समझते हो एक दूसरे को, फिर फिजिकल एक्ट भी आता है, लेकिन फिजिकल एक्ट यही नहीं था कि भाई फिजिकल एक्ट। अब यहां आपको कुछ ब्रह्मचर्य कुछ नहीं समझाने की जरूरत है, केवल इतना समझना है कि डिजायर को भी दो प्रकार से हम एक्सप्रेस करते हैं, एक ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मैकडोनल्ड कल्चर, दूसरा तवे पर आंच पर पका के खाना। हो गया ना डिफरेंस? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला कल्चर जिसमें रेस्टलेसनेस अब बढ़ती चली जा रही है, आज की जनरेशन को ये नहीं पता है, वो रेस्टलेस होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो somebody has to explain, यहां डिजायर को समाप्त नहीं किया जा रहा है। फिर आप क्या करते हो? डिजायर के ऊपर आप एक माइंड ऑपरेट करता है कि भैया देखो ये उचित है, ये उचित नहीं है, डिजायर सेटिस्फाई करो, लेकिन कुछ उचित अनुचित का भेद, लेकिन उचित अनुचित का सोशल मापदंड नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगेन फिजिकल रिलेशन है, अगर प्रेम नहीं है तो अनुचित है। हमारे वेदों में अगर आठ प्रकार का विवाह देखें तो एक गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह में कोई माता पिता कहीं इन्वॉल्व नहीं है पर उसको मान्यता दी गई है, लेकिन राक्षस विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। राक्षस विवाह है बलात्, आप विवाह करते हो, जोर जबरदस्ती करते हो, तब देखिए कैसे आप सिखा रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द ग्रॉस टू द सटल, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, पुटिंग इट अंडर ए डिसर्निंग माइंड. अब उसके बाद इतना भी अगर सीख जाए बच्चे संयम, तो बहुत आगे चले जाएंगे. पर रेस्टलेसनेस है, तुम बड़े रेस्टलेस, चुप हो जाओ बैठो. अरे उनको एनर्जी का विस्फोट हुआ है आज के युग में, वही एनर्जी ऊर्जा का प्रचंड विस्फोट हुआ है. तो वह जो एनर्जी का विस्फोट हुआ है, क्योंकि न्यू सृष्टि होनी है, उसको आप या तो फिनिश कर सकते हो, डिग्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो विस्फोट ज्यादा हुआ है. साथ में स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि आप स्वतंत्र चुनाव के बिना इवोल्यूशन नहीं होता है. जो भी काम हम अपने माँ बाप के कहने पर करते हैं, उसमें हमारा ऑथेंटिक सेल्फ नहीं इन्वॉल्व है. तो आज क्या हुआ है, स्वतंत्रता दी गई है. अब उसमें क्या है, लोगों को बड़ा परेशानी होती है. शेरविन से किसी ने पूछा कि आपने इतनी स्वतंत्रता दी हुई है सबको, यू हैव गिवन ए लॉन्ग रोप टू एवरी वन, इतनी लंबी रस्सी आपने दे रखी है कि आदमी उसके अंत में जाके हैंग कर ले खुद को, डिसाइपल ने पूछा. शेरविन कहते हैं, सुपरमैन कैनॉट बी क्रिएटेड इन एनी अदर वे. अब ये जो फ्रीडम है, ये कैसे ऑपरेट करती है? अब आपकी जो अंदर में चीजें हैं वो सामने आती हैं. पहले भी थी, हम सब जानते हैं. कहाँ थी? पर्दे के पीछे थी. लेट्स नॉट फूल अवर सेल्फ. होली में कैसे गाने बजते थे, वो कृष्ण जी वाली ओरिजिनल होली एक याद है, लेकिन होता क्या था जो रियल उसमें, वी ऑल नो दैट. तो उसको एक्सप्रेस करने के माध्यम थे, और भी माध्यम थे जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं. नगर वधू, ये सारी चीजें थी. हाँ, नॉच गर्ल जिसको कहते हैं, अच्छे नाम, देवदासी, ये सारी, गणिका, दिस राइट. तो वो अब क्या था, वो आप उसको धीरे से, मतलब आपकी गंदगी है कोई चीज, उसको आपने पीछे रखा है, सामने आप बहुत अच्छे हो, नमस्ते. अब ये अनऑथेंटिक चीज नहीं चलेगी, इसको शेरविन कहते हैं हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी अब चली जाएगी, ये संसार में हिपोक्रेट्स का जमाना नहीं है. बच्चे भी इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो अब क्या करें हम, अब वो चीज फ्रीडम दे देगी, वो निकलेगी, तो दोनों चीजें होंगी. एक्सट्रीम गुड आएगा और एक्सट्रीम ईविल आएगा, लेकिन जो गुड आएगा ऑथेंटिक गुड होगा, क्योंकि आपने उसका अपना चुनाव करके उसको चुना है. कुछ लोग होंगे, पर ये लोग होंगे जो जेन्युइन लोग होंगे. गॉड ट्रेड्स इन दिस जेन्युइननेस बिजनेस. वो भगवान इससे मूर्ख नहीं बनते हैं कि वो बैठ करके देखो आंखें मूंद के 2 घंटे बैठा हुआ है. कमाल है, क्या समाधि लग गई है. हम लोग ऐसे सोचते ना, 2 घंटे बैठा रहा, भगवान से पूछो, हाँ नींद आ रही थी उसको, बोर हो रहा था, बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा था आंखें मूंद के. दूसरे तो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, आश्रम में जाके यही देखते हैं कौन बैठा हुआ है. ऐसे पूछते कई बार, मैं से पूछा है लोगों ने, कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं आप? यही समझ आता है योग से. मेडिटेशन अच्छी चीज है अगेन, पर वो मेडिटेशन ये नहीं है कि आप केवल आंख मूंद के बैठे हो. वो एक स्पेशल प्रोसेस है जो करनी चाहिए, उसका अपना एक औचित्य है, पर उसको इलिजिटिमेट एक्सटेंशन दे दिया गया कि दिस इज स्पिरिचुअलिटी ओनली. तो ये ऑथेंटिक चीज निकलेगी. अब जब वो एनर्जी निकली तो क्या हुआ एडोलेसेंस को, उसको दिशा नहीं है. तो दिशा देनी है उसको, कैसे दिशा देंगे? अब निकल गई है एनर्जी, क्या करिए? स्पोर्ट्स में चैनलाइज करिए, हॉबीज में चैनलाइज करिए, नई नई चीजें पढ़ने में चैनलाइज करिए. स्कूल की किताबों से बोर हो रहे हैं बच्चे, उनको आउट ऑफ सिलेबस चीजें सिखाइए. अच्छे बैट्समैन जो ग्रेट होते हैं, 2 तरह के बैट्समैन होते हैं, गुड और ग्रेट. गुड कौन होते हैं? जो सिखाए हुए तरीके से स्ट्रोक खेलते हैं, है ना. जो ग्रेट होते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर जाके खेलते हैं. गैरी सोबर्स, आप सोच नहीं पा रहे कि ये क्या कर रहा है, कंफर्ट जोन के बाहर जाके. तो ये अंतर है. तो ये किताबों लिमिटेड क्यों, उनको ज्ञान का विस्तार क्या वहीं तक सीमित है. टेल देम, अब स्वाभाविक है कि अब वहां समस्या आती है कि स्कूल को डिग्री देनी है. अब ये बहुत बड़ी विकट समस्या है. तो इसका समाधान लोग इस तरह से करते हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत कम जगहों पे, कि हम पहले 5वीं क्लास तक ये एक फ्री डेवलपमेंट को हम लोग एनकरेज करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको हम अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम में स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे। ये एक समाधान है। दूसरा समाधान है जैसे तारा दीदी ने आश्रम में किया कि भाई एक पूरा सेक्शन उन्होंने रखा फ्री प्रोग्रेस के लिए, और फिर उन्होंने अपने ही एक स्कूल बनाया उसके पैरल, तो यहाँ वाले बच्चे वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल होती है। समाधान है आज की लिमिटेड, उसमें वी कैन वर्क इट आउट। एट सम पॉइंट उनको आना पड़ेगा। अभी हालांकि अभी बहुत चीज़ें खुल गई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस मामले में काफ़ी कुछ ओपन एंडेड हो गई है, विच इज़ वेरी गुड, ऑल क्रेडिट टू दैट। बहुत कुछ होना है लेकिन क्रेडिट तो ये सब करना चाहिए। गीता रामायण पढ़ानी चाहिए बच्चों को। अब बोलेंगे कि सेकुलर एजुकेशन नहीं, हम ये सेकुलर रिलीजियस की बात नहीं, कोई पूछे तो कहिए, ये तो हमारे राष्ट्र में जुड़ी हुई हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हम उसको जानना चाहते हैं, हमको ये अधिकार है जानने का कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हाँ, संस्कृत लैंग्वेज, ये तो जानने का अधिकार है कि हम हमारे पूर्वज कैसे थे, हम डिस्कनेक्टेड थोड़ी हैं। इसमें कौन सी नॉन सेकुलर चीज हो गई यार, आपने रामायण पढ़ा दी, नॉन सेकुलर होगी अगर आप जबरदस्ती डंडा लेके बोलोगे राम को भगवान मानो। हम ये नहीं, हम तो उनके गुणों के बखान कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो ये आपकी समस्या है। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हमारे अंदर एस्पिरेशन हो, मुख्य चीज है एस्पिरेशन। तो उस लॉ को जलाइए और उसको फीड करिए, तो आप देखेंगे कि आपके अपने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस इमर्ज करेंगे। एंड देन अप्लाई इट, बी करेजियस, बी बोल्ड। टाइम स्पिरिट सपोर्ट कर रही है इस चीज को। जो नई धारा निकली है काल की गति, नया युग परिवर्तन हुआ है, तो इट विल सपोर्ट। दैट्स व्हाई आप देखिए जगह जगह ऐसे प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज दी समरी। ओके, कोई और प्रश्न? पहले मैं प्रश्न समझा दूं क्योंकि सब लोगों को उससे कनेक्ट होना। नॉर्मली जब हम लोग एक शब्द यूज करते थे आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, तो ये आईक्यू जो है बहुत, ये भी एक चाल थी। चाल क्या थी कि हम सुपीरियर रेस हैं, ये वहां से शुरू हुआ था। तो जो ओरिजिनल आईक्यू टेस्ट है ना साइमन बिने की, तो आप देखोगे उसमें 10-15 सवाल ऐसे होते थे जो केवल वेस्टर्न कल्चर में जो बड़ा हुआ वो बोल पाएगा। तो ये समस्या हुई, तो उन्हें प्रूव कर दिया ये जो इंडियंस हैं अफ्रीकन्स हैं इनकी आईक्यू 15 लोअर है और इसलिए हम सुपीरियर हैं। ये स्टार्ट ऐसे हुआ था, हम सुपीरियर हैं। फिर लोगों ने कहा ऐसे कैसे, तो उस पर और एक्सपेरिमेंट हुए। फिर बाद में ये दूसरे टेस्ट आए जो नॉन लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड थे। तो एनीवेज अभी बाय एंड लार्ज आईक्यू एक मॉडिफाई करके कि भाई एक इंटेलिजेंस है जो आपके चीज़ों को समझने में और उसके कई आयाम है, प्रैक्टिकल है इत्यादि है, उसको आमतौर पे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। उसमें कई डायमेंशंस है, मेमोरी है, जजमेंट है, छोड़ दीजिए उसको। फिर एक नया कंसेप्ट आया, वो आता ईक्यू। ईक्यू इज इमोशनल कोशेंट, जिसकी बात मैं कर रहा था। ये हमारे यहाँ हम लोग क्या है ना, ब्रांडिंग नहीं जानते। तो वो डेविड गॉडमैन ने वो किताब लिख दी और दुनिया लेके घूम रही है, अरे ईक्यू क्यों। मैंने कहा भगवत गीता में ये बात लिखी है, इससे कहीं आगे की बात लिखी है। आपको वो वेस्टर्न एक ठप्पा चाहिए, और उन्हें नाम दे दिया ईक्यू, बड़ा फैंसी फुल नेम, आईक्यू ईक्यू, और बड़ा प्रचलित हो गया। हम समोसा कहते रह गए, उन्होंने उसको क्या टोटा किला या क्या रोटी पराठा, उसको रैप पराठा रोल को कुछ और कह दिया। और ऐसा मार्केटिंग हुआ, जाके आप मेनू देखते हैं तो लगता है ये क्या चीज होगी। हाथ में आता है, हम लगते हैं हमारे घर में तो इसको मम्मी पराठे के अंदर भर के दे देती थी, हम तो खाते रहते थे, और वो ज्यादा स्वादिष्ट होता था। हाँ, बरीटो, पैसे भी लग रहे हैं और ये उल्टा पुल्टा नाम। तो दे नो हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट, तो पहले तो हमको समझ आनी चाहिए। अब ईक्यू क्या है, डिलेइंग इमोशनल ग्रेटिफिकेशन। तो उन्होंने प्रूव किया ये टू द क्रेडिट कि जो डिले करते हैं इमोशनल ग्रेटिफिकेशन रियल लाइफ में, वो ज्यादा सक्सीड करते हैं। क्योंकि आईक्यू से हम समझते हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंस ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन ईक्यू के बिना वो नहीं होगा. क्यों होगा? वो अपनी बीवी से भी तर्क करेगा, हर जगह वो पहले मैं. तो अब ऐसा व्यक्ति को कौन झेलेगा? पुराने समय में औरतों के पास चॉइस नहीं होती थी, आदमियों के पास भी, पर जनरली ये बीमारी अब नहीं झेलती हैं, कहती रखो तुम अपना ज्ञान अपने पास. हो गया ना अब आपका, क्योंकि आपको लग रहा है आईक्यू मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, पर आपको ईक्यू रिलेशनशिप में कैसे हैंडल करना है, इमोशनल क्वेश्चन नहीं है. तो ईक्यू आया, उसके कई आया. अब जो ये बात कर रही है वो एसक्यू. मेरे एक मित्र ने इसको डेवलप होने में, मतलब पहले उसने मुझे दिखाया था कि हम मैं डेवलप कर रहा हूं स्पिरिचुअल कोशेंट. तो स्पिरिचुअल कोशेंट क्या है, तो उसकी वो बात अपनी जगह छोड़ दो. उसने अपना क्राइटेरिया बनाया विच स्पिरिचुअल कोशेंट क्या है. अगर आप ओरिजिनल ईश उपनिषद की उसमें जाएंगे तो इट इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स एंड द बाउंड्रीज. जैसे ईक्यू इज डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, आईक्यू इज विद इन द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज. हाउ वेल यू कैन गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स एंड द बाउंड्रीज. तो आप इसको एक जनरलाइज कर रहे हो, जिसकी बात हो रही थी क्वेश्चन. क्वेश्चन शुड चेंज इन टू क्वेस्ट. वेर एवर देर इज द अर्ज टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, आपके अंदर पहले तो क्रिएटिव सर्ज प्रकट होगी. क्योंकि अब आप सीमा के बाहर जा रहे हो ना, तो आपके अंदर कोई नई चीज प्रकट होने की संभावना. तो नॉट टू बी सेटिस्फाइड विथ स्टैंडर्ड आंसर्स एंड सीक टू नो मोर, टू अंडरस्टैंड मोर, टू गो बियॉन्ड स्क्रिप्चर, टू गो बियॉन्ड रिलीजन, टू गो बियॉन्ड आइडियोलॉजी. और ये बच्चे आजकल आ रहे हैं, मैं मिलता हूं ऐसे बच्चों से, बड़ा आनंद आता है. वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, वो ना रिलीजियस है ना आइडियोलॉजिकल है, और सब पकड़ के उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं. पर वो अद्भुत हैं, और अगर आप उनको फिट करने की चेष्टा करोगे ना, परेशान हो जाओगे, नचा देंगे छोटे कन्हैया की तरह आपको. तो ये बच्चे आ रहे हैं एडोलेसेंस, मैं देख रहा हूं ऐसे बच्चों को, वो फॉर्मेट में नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि वो इसके आगे जाना चाह रहे हैं, उनके प्रश्न हैं. आजकल प्रश्न करते हैं लोग. दिस इज द साइन ऑफ एन इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल कोशेंट. स्पिरिचुअलिटी कहां से शुरू होती है? क्वेस्ट से शुरू होती है ना, इस जगत के परे क्या है. तो हर विषय में आप इसको लाओ. एक उदाहरण, राष्ट्र क्या है, आस्क चिल्ड्रन. अब हमारे यहां एक नेता कहते हैं कंट्री है जो धूल मिट्टी है, सभी कहते हैं लोग. मुझे बड़ा दुख होता है कि भारतवर्ष में भी अभी तक हम राष्ट्र एक लिविंग गॉडेस है, इसको नहीं समझ सके अभी भी. तो गो स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये जनता का जो जनमानस है, जनसमूह है, जनगण है, तो मतलब कि राष्ट्र तो कब से, आप अगर राष्ट्र को देखेंगे तो भूखंड में कितनी चीजें आई हैं, कितने उथल पुथल आए हैं. उसकी जैसे एक इंडिविजुअल की फिजिकल बॉडी है, वैसे ही क्या किसी राष्ट्र की एक इमोशनल बॉडी होती है? आप ढूंढ के देखिए, आपको मिलेगी, जिसको हम इनहेरिट करते हैं जब एक राष्ट्र में जन्म लेते हैं. क्या उसकी कोई मेंटल बॉडी होती है, एक सोच का तरीका? यू विल सी कि देयर इज ए मेंटल बॉडी. क्या उसकी कोई आत्मा होती है? यह भी मिलेगी. इफ यू सर्च यू विल फाइंड. तो चिल्ड्रेन शुड बी लेड टू दिस विजन दैट ए नेशन इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ लैंड. आफ्टर ऑल पीस ऑफ लैंड है, तो इसके लिए कौन झगड़ा करेगा भाई? मिट्टी के लिए. तो देखिए उससे क्या होता है, आपकी पूरी सोच भी बदलती है, आपका एक्शन बदल जाता है. अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई ये कंट्री तो केवल एक धूल मिट्टी है, पीस ऑफ लैंड है, तो मैं कहूंगा इसके लिए जान कौन देगा, बेवकूफी लगती है. इसको किसने पजेस किया नहीं किया, इट इज इरेलेवेंट. और ये विचारधारा एग्जिस्ट करती है आज. अगर आप कम्युनिस्ट व्यक्ति से पूछोगे तो वो यही कहता है, इट इज ए पीस ऑफ लैंड. इतनी भयानक विचारधारा है ये. इफ इट्स ए पीस ऑफ लैंड तो आपने हमको किया जमींदार झगड़ा करें वही छीनो झपटो, यही तो विचारधारा में अल्टीमेटली, इसलिए उनके यहां ये कंसेप्ट है बैरल ऑफ ए गन, आप छीन लो तो आपकी हो गई, धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो जब आप उसके पीछे पीछे जाओगे देन यू सी इट इज सी द मदर आ, उसने पोषण किया है। आपके अंदर ये विचार कैसे आए, क्योंकि राष्ट्र में कहीं ना कहीं किसी जगह वो एग्जिस्ट करते हैं जो आप इनहेरिट करते हो, अपनी मेंटल बॉडी आपकी शेप करता है, फिर उससे कई चीज़ें प्रकट होती हैं जिसमें देर आर सम यूरोपियंस इन इंडियन बॉडीज, देर आर सम इंडियंस इन यूरोपियन बॉडीज, कई चीज़ें आती हैं जो स्पष्ट दिखती हैं। तो हर एक राष्ट्र की अपनी एक सूक्ष्म देह होती है और उसी प्रकार हर एक राष्ट्र की एक आत्मा होती है। कैसे आत्मा पता चलेगा, आत्मा तो अविनाशी तत्व है, बहुत सिंपल है। भारत के लिए तो बहुत ईजीएस्ट है, फ्रांस के लिए भी ईजी है, अमेरिका तो नया नया जन्मा है। अब आत्मा क्या है, वो तत्व है जो सारे उथल पुथल चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है, अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस कर रहा है। अब आप देखिए भारतवर्ष पिछले 5,000-10,000 वर्षों से क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ट्रुथ्स ऑफ द स्पिरिट, ये उसका कॉन्स्टेंट है। चाहे वो कालिदास हो सेंसुअस में ट्रुथ ऑफ द स्पिरिट ला रहे हैं, वाल्मीकि हो तब या आज के पोइट्स हो, देयर इज दिस भारतवर्ष में ये इनग्रेंड है, उसकी आत्मा का ये अभिव्यक्ति है। अगर आप भारतवर्ष से टेक्नोलॉजिकल सब डेवलप कर दो, स्पिरिट हटा दो, तो कुछ नहीं है ये। दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू बिकम अनदर चाइना। लोग कहते, मैं कहता हूं आप विनाश की ओर ले जा रहे हो। इंडिया कैनॉट एंड मस्ट नेवर बिकम अनदर चाइना। ठीक है बाहरी डेवलपमेंट है, पर हम साथ साथ इनर को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हमारे जन्म लेके हो जाता है कि कोई भारत में सरेंडर, वी लर्न इट, वी ड्रिंक फेथ सरेंडर विद मदर्स मिल्क। वेस्ट में बहुत मुश्किल है, मैं तो इतना जाता हूं देखता हूं उनको ये समझने में कि सरेंडर क्या होता है, कैसे होता है, फेथ क्या होता है, बहुत कठिन होता है उनके लिए। वी डोंट नो, हमको ये विरासत में मिलता है बिकॉज ये हमारी ये इसकी भारत की आत्मा में ये बसा हुआ है। पहाड़ को भी पूजा कर लेते हैं, जहाँ भी आप जाइए रोड पर एक दो मंदिर इधर उधर नमस्ते, नैनीताल के रास्ते में हर जगह घंटी बजा रहा है वो ड्राइवर, किसी ने पूछा काम क्यों, कहते नहीं नहीं वो वहाँ ये देवता है वो देवता है, हर वो थोड़ा आगे जाके घंटी बजा देता था, बड़ा मज़ा भी आ रहा था उन लोग को। हमको लगा कि ये उसको जागे रहने का एक साधन है टिल किसी ने पूछा भैया आप घंटी क्यों बजा रहे, कहते नहीं ये वो देवता का वहाँ स्थान है, ये उसका स्थान है, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। तो स्पिरिचुअलिटी ये यहां की, फ्रांस में ये नहीं है। फ्रांस किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नारा वहां से गया। स्पिरिचुअल ट्रूथ है लेकिन उसका एक, और उसमें उनका जो प्रधान तत्व है वो आत्म तत्व नहीं, इंटेलेक्ट, रिफाइंड इंटेलेक्ट। आप फ्रेंच मूवी देखें, माय गॉड, उसमें इमोशंस की जो रिफाइनमेंट, साउथ कोरियन मूवीज में भी, साउथ कोरियन मूवीज काफी कुछ इंडियन जैसी लगती हैं क्योंकि वो है तो एशियाटिक ना, हाँ जैपनीज, आपको लगेगा कि बस ये लैंग्वेज और चेहरा हटा दें वो भारतीय है। साउथ कोरियन मूवीज तो आई जस्ट लव वॉचिंग देम वेन एवर, वो लगता है कि ये बस वही भाव है, उसका रिफाइंड एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अच्छा मैनिफेस्टेशन। आफ्टर ऑल किन की भूमि है, नाता है हमारा, ये देखिए मोदी जी ने पता कर लिया था, महाराज दशरथ की बेटी, वहां भी आप बेहाई थी, एक लिंक है, डीपर बॉन्ड है। तो आप जैसे शेरविन कह रहे हैं एशियाटिक्स की एक वे है, यूरोप का एक अलग वे है, वहां पे बहुत स्ट्रांग है देहात्मबोध, तभी तो उसको असुर प्रदेश, असुर का भी समय होता है, भगवान हर किसी को टाइम देते हैं, तो 2000 वर्ष दिया, सबका टाइम आएगा, तुम्हारा आगे जा रहा है। तो ये जो है हर एक राष्ट्र का, अमेरिका सॉलिड मैटर, इतने साधन दिए हुए हैं लिमिटलेस। जर्मनी प्रिसिशन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग कोल्ड, अगर जर्मन मुस्कुरा दे तो आपको आश्चर्य होता है कि भैया चक्कर क्या है, और आप मुस्कुराएंगे तो वो पूछेगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। उसको समझ नहीं आती है मुस्कान, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, लेकिन देखिए उनकी मशीनरी जो मातृ मंदिर में लगाया ग्लोब, जर्मनी की टेक्नोलॉजी, प्रेसिशन, उनका इंटेलेक्ट जो कोल्ड प्रिसाइज एकदम परफेक्शन से चीज बनी होगी, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं भावों को इसको। इटालियन आपको लगेगा कि भारत से मिलते जुलते हैं इमोशन सुन के। हर एक राष्ट्र में आप जाएंगे तो वहां का एक कोई प्रधान तत्व है जो आपको इमिजिएटली स्ट्राइक करेगा। स्पेन जहां मैं गया इतने पैशनेट हैं, मुझे लग रहा था मैं पंजाबियों के बीच में हूं, भाषा दूसरी बोल रहे हैं, बस देर है वो भाषा अगर बदल गई इनकी तो आपको लगे पंजाबी पूरा पैशनेट प्रकट हो रहा है अपना। तो ये हर एक राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, और यही नेशनल एजुकेशन का जो मुख्य प्रिंसिपल है वो ये है कि वी मस्ट कैच दैट, वो उसकी स्ट्रेंथ है। जापान की मेटीरियल ब्यूटी, वो एस्थेटिक रिफाइनमेंट, वो आपको छुरा भी घोपेगा ना तो इतने रिफाइंड ढंग से घोपेगा कि आपको मर जाओगे, पता नहीं चलेगा कि इसने कैसे मार डाला। देखिए फिल्म है ना वो लास्ट समुराई, तो खैर अमेरिकन मूवी है, पर वो ऐसे मारेगा कि आपको पता ही नहीं चला कि आप शरीर के बाहर निकल गए। क्या किया इसने, ना कोई भाव होगा उसके चेहरे पर, नथिंग विल बिट्रे हिज फीलिंग, बट इट्स नॉट जस्ट ए कोल्ड ब्लडेड, ये हमारी सोच है, रिफाइंड है उसके। छुरे में भी एक जापानी छुरा, जैसे हमारे यहां होता है रामपुरी छुरा, जापानी छुराबाजी, आर्ट है वो, आर्ट एस्थेटिक्स। तो हर एक राष्ट्र के अंदर ये कोई चीज होती है जो उसमें झलकती है, वो उसकी स्पिरिचुअल सेल्फ है, सोल है। तो आप ऐसे बच्चों को मजा भी आएगा अगर ऐसे बोल दें नहीं हमारे राष्ट्र की आत्मा है, ऐसा लिखा हुआ है, कहा गया है, तो दे डोंट कनेक्ट। तो इससे कनेक्ट करना है उनको। दुर्गा, माँ दुर्गा इसकी गार्जियन डेटी हैं। दुर्गा का जब हम आह्वान करते हैं, और उसको कई स्टोरीज, अब कैसे लोग अक्सर पूछते हैं शेरविंद ने दुर्गा का आह्वान किया, कैसे वो हमारी गार्जियन डेटी हैं, वाई वी कॉल मदर इंडिया, फादर का कंसेप्ट है बाकी जगह, भारत माता क्यों कहते हैं। अब इस लास्ट पार्ट बोलिए, भारत की रचना कैसे हुई, कार्टोग्राफी ये सब तो बाद में आई, सती के अंगों से आप जोड़ लीजिए कहां कहां सती, माता सती के अंग गिरे, शक्तिपीठ बन गए। तो ये जो इतना अद्भुत ढंग से भारत प्रकट हुआ, उसकी बर्थ ही स्पिरिचुअल है, उसकी कंसेप्शन स्पिरिचुअल है, मानसिकता सती के अंग। अब कैसे, देखिए कितने इंटेलिजेंट वे में, अब जहां जहां शक्तिपीठ है वहां जो लोग यहां के थे आते जाते रहते थे, तो कल्चरल मिक्सिंग ये सब हुआ। तो हमने इस, ये हमारा एरिया कैसे शुरू हुआ, स्पिरिचुअल, फिर कल्चरल, फिर वो फिजिकल भूखंड। तो इट्स फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। तो ये बहुत मजेदार चीजें हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और ये सब अपने अंदर ही उत्तर आएंगे, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता मतलब गांधी जी वाज ए प्रॉप्ड अप पर्सन, ये तो अब ये सत्य सामने आ रहा है। ब्रिटिश को बहुत पसंद थे वो, उनको पता था ये कुछ करेगा नहीं, ये खाली बस लाठी भांजेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये व्यक्ति है, हमें तो ऐसी बंदा चाहिए। तो पहले उन्होंने प्रॉप अप किया, सपोर्ट दिया, और इन्होंने अपना धर्म निभाया ब्रिटिशर्स के प्रति पूरा। जहां कोई रिवॉल्यूशन की बात करता था ये उसको हैंड ओवर कर दो। और अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, अब ऐसे व्यक्ति को आपने राष्ट्रपिता बना दिया, पिता और ऊपर से अगेन क्या आइडियल रखा और उसको कैसे पॉपुलराइज किया, दुबला पतला खाली हाथ लड़ता बादशाह के साथ, बोलो कौन, गांधी जी। यहां इतने लोग रिवॉल्यूशन में गए आपने उन सबको। अब लोग कहते हैं लेकिन गांधी जी ने, ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल चीज है। अब तो खैर ये बातें पब्लिक हो गई हैं श्री अरविंद ने बहुत पहले की, वो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ के गए? वो छोड़ के इसलिए गए क्योंकि इस जो वर्ल्ड वार हुई, कमर टूट गई। दे कुंट हैव मेंटेन्ड ए वाइट एलिफेंट, और भारत में एक आर्म्ड रिवोल्ट की भी प्रवृत्ति जाग गई थी, सुभाष ये सब चीजें शुरू हो गई थी भारतवर्ष के अंदर, और उनको लगा अब तो हम रिसोर्सेस खत्म है, वापस चलो, लूट के जितना ले जा सकते हो जहाज भरो और भागो। पर जाते जाते उन्होंने क्या किया, ये हमारे फेथफुल, तो माई फेथफुल वाज गांधी जी, इनको तो कुछ हम दे ही देते हैं, दे दिया उनको पार्टीशन दे दिया। अब फिल्म आ रही, इस पर सीरियल बन रहा है शायद, ये सारे सत्य। और अब कांग्रेस ने उनको कैटापल्ट किया, क्यों? हाँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, करेक्ट। तो अब कांग्रेस ने क्यों, वोट के कारण, पता उनको भी है, हकीकत ऐसा नहीं है पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन वोट के कारण। बाकी तो हम लोग मूर्खानंद हैं जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, वो हमारी समस्या है, नहीं पढ़ाना चाहिए। ये राष्ट्र क्या 75 साल पुराना है, राष्ट्रपिता का यहां अगर किसी को नाम दिया जा सकता है तो सबसे पहले जम्बू द्वीप को आर्यवर्त, जो ओरिजिनल नाम है भारतवर्ष का, जहां से उसकी साइकोलॉजिकल पहचान बनी, उसके पहले उसकी फिजिकल पहचान थी जम्बू द्वीप। क्यों? क्योंकि जामुन के या उसके पेड़ लगते थे, वो तो आपकी एक बायोलॉजिकल पहचान कि भाई ये द्वीप है, जहां पे त्रिद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, त्रिद्वीप। आर्यवर्त श्री राम से प्रारंभ हुआ, इसलिए श्री राम ओरिजिनल फादर है। फिर उस फादरहुड को आगे शिक्षा किसने दी? श्री कृष्ण ने दी। और ठीक है, अगर ये डिक्लाइन हुआ, रीबर्थ किसने कराया? श्री अरविंद ने कराया। तो आप इन तीनों में किसी को चुन लीजिए या एक को रखिए। पर ये कहना कि गांधी जी, ये तो मतलब स्टुपिडिटी की हद है, ये क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया, बचपन से जो सुनते आए बस उसी को मान लिया है सत्य है। वी शुड क्वेश्चन ऑन व्हाट ग्राउंड। अब ये चीज आ गई है, ये क्योंकि एक नया भारत जग रहा है। तो ये आपने बताया सीरियल जो आ रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट, और मैंने देखा नहीं है, वो शायद दिसंबर में शुरू होगा, बट देर आर थिंग्स लाइक दैट विच आर कमिंग। और इट्स नॉट अबाउट ए गवर्नमेंट, इट्स अबाउट दीज आर ट्रूथ। साबरमती रिपोर्ट अभी एक आई, क्योंकि लोग अब वो सत्य गड़े निकलेंगे। लोग कहते गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ो, सत्य उखाड़ेगा, यही है जजमेंट डे, आप उखड़ेंगे, यू कांट हेल्प इट। जितने कारनामे हुए थे पुराने, वो क्योंकि सत्य युग के पहले न्याय का युग आता है, सूर्य के पहले शनि देव एक्टिव होते हैं, आता है ना सूर्य, सूर्य संडे के पहले, रविवार के पहले कौन क्या बार आता है, शनिवार, शनिदेव क्या करते हैं, बैलेंस शीट आपकी बराबर करते हैं, कहते हैं आप ठीक है आप संडे, तो ये बैलेंस शीट बराबर हो रही है, इसलिए बाबरी मस्जिद इत्यादि, इट्स ए लेवलिंग प्रोसेस, यू कांट हेल्प इट। और ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये एक प्रोसेस शुरू हुई है और होगी और चलती रहेगी, क्योंकि ये बात ये नहीं कि अब छोड़ो क्या करना, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। माता जी ने एक मैसेज दिया था, Men, countries, continents, the choice is imperative, truth or the abyss. तो सत्य जिसको हम छिपाए बैठे थे, दबाए बैठे थे, स्वीकृति नहीं दे रहे थे, वो अब मांगेगा आपसे कि भाई आप मुसलमान रहिए पर आपकी पहचान भारतीय भी है, आप राम और कृष्ण को डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस धरती का हिस्सा है, आप गीता को डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं, यू कैन बी ए मुस्लिम, देयर इज नो प्रॉब्लम, डिसोन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इंडोनेशिया ने किया है ना उसको, उसी प्रकार से आप अरेबिया में, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि भाई ठीक है उनके यहाँ ये चीजें नहीं है, पर हमारे यहाँ ये हमारी विरासत है, इसको आप डिस्क्लेम करेंगे तो राष्ट्र को समाप्त करेंगे। बात ये नहीं कि किसको क्या पसंद है, अपनी अपनी रिलीजन फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप यहाँ की जो आए गई आप, वो तो शिवजी निकल रहे हैं अंदर से, मनुष्य इंस्ट्रूमेंट हैं, यू जस्ट कांट हेल्प इट। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि आप इसको दबा सकेंगे, नहीं दबेगा ये काम मनुष्य नहीं कर रहा है। और ये सारे विश्व में हो रहा है कि गड़े मुर्दे निकल रहे हैं, होल वर्ल्ड ओवर ये चीज आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया में आपने वहां मसाई मारा ट्राइब ये सब आपने समाप्त कर दिए थे, मसाई नहीं कौन सी थी दूसरी ट्राइब थी, चिरोकी, आपने उनको खत्म कर दिया था। हाँ हाँ, चिरोकी एक थी, हाँ थी, ट्राइब्स थी उनकी, इन्होंने जाके मार डाला। अब जो जनरेशन आ रही है, 6 जनरेशन इनके हाथों में खून रहा, कहते रहे हम सिविलाइज्ड हैं। अब जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन, वो क्वेश्चन कर रही है, वो कह रही है हमने तो ये गलत किया, हमको ये रिकनसाइल करना चाहिए। उन बच्चों को किसने सिखाया? वो अंदर से आएगा उनके अंदर, वी शुड रिकनसाइल, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये किया तो हमने गलत। यही थॉट मुसलमानों के अंदर आएगा कि हमारे दादा परदादाओं को जबरदस्ती तलवार के जोर पर बदला गया था। और किसी का तो स्वाभिमान जागेगा, अरब में ठीक है उनकी कोई समस्या नहीं है, पर यहां तो आपको किया गया था ऐसे, आप कब तक इस चीज को अस्वीकार करेंगे? और चूंकि अस्वीकार करते हैं इसलिए आप देखिए ओवर ज्यादा करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि वी आर मोर द मुस्लिम्स, वी आर मच मोर मुस्लिम देन इन अरेबिया, क्योंकि यू वांट टू प्रूव। तो ये बहुत सारी मानसिकता के अंदर चीजें हैं, तो ये तो आएगा, बहुत कुछ हुआ, ये किसी पॉलिटिक्स और पार्टी के हाथ में नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग ये उससे अलग हो गया, एक नई जो ऊर्जा है वो कार्य कर रही है, इट्स ट्रुथ कॉन्शियसनेस, वो व्यक्ति के अंदर, राष्ट्रों के अंदर, मानव समूह के अंदर इसको जगा रही है। वी मे लाइक इट, वी मे नॉट लाइक इट, दैट्स अवर प्रॉब्लम, बट द एक्शन ऑफ ट्रुथ डज नॉट डिपेंड ऑन अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सिंपल बात है। ओके, छोटी सी एक पोयम कोई पढ़े, 4-5 लाइन की, 5 मिनट है। ये सियर डीप हार्टेड, ये महेश्वरी जी की, पापा की बड़ी फेवरेट कविता होती थी, ये टोल्ड मी कि दिस वन ऑफ हिज फेवरेट पोएम्स। और हालांकि मैंने पढ़ी थी, पर उन्होंने सबसे पहले कि आओ मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा एक प्राइवेट मोमेंट में ही रेड दिस, तो चूंकि वो यहाँ से इतना जुड़े सेंटर से, तो यू शुड रीड इट। लेकिन इसमें ब्यूटी ये है, ये शेरविंद की एक प्रकार से कहें तो आत्म उनका ही ये, वो कौन है उनका, जो एक ऋषि का तत्व है, तो ऋषि कौन होता है और वो क्या करता है, कैसे वो जीवन को, वो ऋषि की पूरी वो सियर डीप हार्टेड, तो ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट है उनका, सब कुछ नहीं कवर हुआ है। जीवन मुक्त में भी उनका अपना ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट है, इसमें भी उनका ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट है, लेकिन हम लोग चूंकि समय नहीं है, बस वील रीड इट। सियर डीप हार्टेड, ऋषि का हृदय कितना प्रेम से भरा होता है, जैसे पर्वतों के अंदर मीठा झरना छिपा होता है। सियर डीप हार्टेड, डिवाइन किंग ऑफ द सीक्रेसी, सारे रहस्य उनको बताते हैं, वो भोलेनाथ जैसे बैठे रहते हैं, सारे रहस्य। दिलीप कुमार रॉय की कहानी है ना, किसी से गए इनिशिएशन लेने और उन्होंने कहा तू मेरे पास आया है मूर्ख, तेरे तो गुरु सारी सिद्धियों के ढेर पर बैठे हैं, ये आपको किसने कहा? कहा वो आके मुझे बता के गए, कौन है? सी अरविंद। उसने कहा लेकिन मैं तो उनसे गया जब इनिशिएशन मांगने, तो उन्होंने मुझे टाल दिया। कहा हाँ, क्योंकि तेरे पेट में हर्निया है, फोड़ा है कोई? हाँ वो तो है। तो तुझे अगर वो प्रेशर पड़ेगा योग का तो ये फट पड़ेगा। अच्छा तो तू ऑपरेशन करा के जाना। गया तो शेरविंद ने स्वीकार कर लिया। कहा आपने इतना कॉम्प्लिकेट रास्ता क्यों बताया, मुझे सीधा बता देते। उन्हें कहा मुस्कुरा के, शेरविंद तुम विश्वास कर लेते मेरी बात पर? अंत तक वो विश्वास नहीं कर पाते थे। तुम विश्वास कर लेते यदि मैं ऐसा कह देता तुम्हें? तुम इतने नाना प्रकार के प्रश्न उत्तर करते। तो मैंने उसका सिंपल समाधान, अब तुमको विश्वास हो गया, मैजिकल कोई चीज हुई। उसने बोला तो सारे रहस्यों के वो ज्ञाता, सावित्री पढ़िए, कौन सी ऐसी सिद्धि, कौन सा ऐसा ज्ञान जो उनके पास नहीं था। डिवाइन किंग ऑफ द सीक्रेसीज, अकल्ट फाउंटेन ऑफ लव स्प्रंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। श्री अरविंद का करुणा प्रेम ही है ना, जिसके चलते वो ये सब आंखें अपनी उन्होंने लिटरली खो दी, भौतिक आंखें, हम लोगों को नई दृष्टि देने के लिए। लेटर्स आफ्टर लेटर्स, एक ही प्रश्न को वही डिसाइपल बार बार पूछ रहा और वो उत्तर दे रहे हैं। ये नहीं कह दिया था ना मैंने, जाओ जाओ लाइफ डिवाइन पढ़ लो, क्या प्रेम है। रात रात को डिवाइन किंग ऑफ द सीक्रेसीज, ऑकल्ट फाउंटेन ऑफ लव स्प्रंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, वेज दाउ न्यूएस्ट नो फीट एवर इन टाइम हैड ट्रॉड, जहां आज तक कोई नहीं गया था, कोई ऋषि, कोई मंत्र दृष्टा, कोई ये सब कोई नहीं गया, जहां वो पथ भी वो गए। और माँ का एक विजन है जहां वो देखती हैं एक ट्रेन जा रही है, जहां सब लोग उतरते चले जा रहे हैं, फिर एक लास्ट स्टॉप आ जाता है, सब उतर जाते हैं। शेरविंद कुछ क्षण रुकते हैं, फिर कहते हैं नो आई विल गो फर्दर। तो वहां जहां कोई नहीं गया, वर्ड्स लिप्ड शाइनिंग द फ्लेम बिलोज ऑफ विस्टम्स सीज। विस्टम शी क्षीर सागर की इतनी सुंदर परिभाषा सुनी है, क्षीर नॉलेज, विजडम के सीज से मत करके जो उसका एसेंस है ज्ञान का, वो उनकी वाणी में समाहित है। तो जब हम की वाणी पढ़ते हैं तो क्षीर सागर का जलपान कर रहे हैं, महाक्षीर सागर इफ आई मे से सो। वर्ड्स स्लीप शाइनिंग द फ्लेम बिलोज ऑफ विजडम सीज, वास्ट इन दाई सोल वॉज ए टाइड वॉशिंग द कोस्ट ऑफ हेवन। स्वर्ग में भी, देवलोक में भी, जहां पर कई प्रकार की चीजें पहुंच जाती हैं, नहीं होनी चाहिए, उनके हृदय के भाव इतने सुंदर कि वहां पहुंच करके देवलोक को भी वो स्वच्छ बना रहे। देवताओं ने भी उस भाव को धारण नहीं किया, इतना महत भाव, वास्ट इन दाई सोल। तभी तो माँ कहती हैं जब 26 में उन्होंने कहा देवताओं को, आते थे ये नई लीला हो रही है, किसी शरीर से बंध होके, नहीं नहीं हम आपको ऐसे हेल्प करेंगे, एक्सेप्ट श्री कृष्णा। तो वास्ट इन दाई सोल वॉज ए टाइड वॉशिंग द कोस्ट ऑफ हेवन। देवताओं को त्राण देने वाले कौन हो सकते हैं, देवताओं को शुद्ध परिष्कृत करने वाले कौन हो सकते हैं। थॉट्स ब्रोक बर्निंग एंड बेयर क्रॉसिंग द ह्यूमन नाइट, ये केवल शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, ये शक्ति पुंज हैं, तेज पुंज हैं, प्रकाश पुंज हैं, ये आर कैप्सूल्स ऑफ लाइट, और ये अंदर जाएगी तो अपना काम करेगी। थॉट्स ब्रोक बर्निंग एंड बेयर, कोई लाग लपेट करके नहीं, सीधा ओरिजिनल थॉट्स स्लीप बर्निंग एंड बेयर क्रॉसिंग द ह्यूमन नाइट। वाइट स्टार्स क्रिप्ट्स ऑफ द गॉड्स बॉर्न फ्रॉम द प्रेसेस ऑफ लाइट। देवता कैसे लिखते हैं, कहते हैं ना देवता विधि का विधान कैसे लिखते हैं, तारों की भाषा में। जो ओरिजिनल सेंस था ना एस्ट्रोनॉमी का, फिर वहां से एस्ट्रोलॉजी ने जन्म लिया। अब आप पढ़िए स्टार्स क्रिप्ट्स ऑफ द गॉड्स, श्री अरविंद उस भागवत विधान को धरती पर ला रहे, थॉट्स से वो चीजों को बदल रहे, तारों की गति से नहीं, अपने विचारों के प्रयोग होगी वो वहीं से आ रहे। थॉट्स ब्रोक बर्निंग एंड बेयर क्रॉसिंग द ह्यूमन नाइट, white star scripts of the gods, born from the presses of light. जैसे अंगूर की बेल से निकलता है ना अंगूर का रस, वैसे उन्हें प्रकाश को स्क्वीज कर करके उसके एसेंस. लास्ट लाइन बड़ी टचिंग है. वाइट स्टार स्क्रिप्ट ऑफ द गॉड्स बॉर्न फ्रॉम द प्रेसेस ऑफ लाइट, पेज बाई पेज टू द डिम चिल्ड्रेन ऑफ अर्थ वे आर गिवेन. ये भी नहीं पूछा कि तुम तैयार हो पढ़ने को कि नहीं, दे दिया उन्होंने. ये शेरविंद की जो लेखनी है, ये उनका वरदान प्रसाद, उनकी तपस्या का मतलब गिफ्ट है. घरों में तो रख लेते हैं लोग, देखते भी नहीं है. कुछ डजंट मैटर, समझ आए नहीं समझ आए, रीड अ लाइन टू लाइन्स, एक घड़ी या दो घड़ी, आधों में पुनियाद. ये सत्य की संगति है, कौन जाने क्या चीज जीवन बदल देगी. तो ये सीआरटी भाटेड हम लोग रुकेंगे, 4:15 बेल बजेगा, 4 यहाँ मिलेंगे, ऐसा कुछ निर्णय हुआ है. थैंक यू सो मच.